तो बंगाल में जो पिछले एक साल का जो अनुभव रहा है कोविड का, उसको आप कैसे वर्णन करेंगे? क्या हुआ, कैसे रेस्पॉन्स कैसा रहा है? मतलब ऑफ कोर्स इन कंपैरिजन टू बाकी राज्यों की तुलना में किस तरह का रेस्पॉन्स रहा?
पिछले साल मार्च अप्रैल महीना में जब कोविड का पहला वेव अगर हम बोलते हैं वो जब आया, तो दूसरे राज्यों की जैसा हमारे राज्यों में भी सरकार और जो पब्लिक जो हेल्थ सिस्टम वो तैयार नहीं था। नया एक पैंडेमिक, उसको कैसे संभालना है इसके बारे में बिल्कुल ही तैयारी नहीं थी। तो उस समय हमारे डॉक्टरों का जो संगठन है, हम बंगाल में पांच संगठन एक साथ काम करते हैं। मेरा संगठन, मेरा दो संगठन, श्रमजीवी स्वास्थ्य उद्योग, वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम और सरकारी डॉक्टरों का दो संगठन, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर्स, हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन, और इनके अलावा डॉक्टर्स फॉर डेमोक्रेसी। हम पांच संगठन ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स वेस्ट बंगाल के नाम से काम करते हैं। तो हम शुरू से बार बार सरकार के पास हमारे जो सुझाव सुझाव बोलते रहे, क्योंकि हमारा मानना था कि ए पेंडेमिक इतना फास्ट है, इसको अगर मुकाबला करना है तो वो मुकाबला सिर्फ स्टेट ही कर सकता है। तो और स्टेट की जो है प्रयास है, वो प्रयास को मदद करना हमारा काम होना चाहिए। तो हम बार बार हमारी हमारी जो सुझाव है, हमारी जो मांग है, वो सरकार के पास रखते रहे। फर्स्ट हम सरकार ने हमें अप्रैल महीने के अंत में बुलाए, सरकार के साथ हमारी कुछ बातचीत हुई। तो हमारे हमारे जो सुझाव था वो सुझाव सुने हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, और कुछ कुछ कदम भी लिए। दोबारा हम मिले जून महीना के 17 तारीख में। तो इसके जो बीच का जो पीरियड, बीच के पीरियड में मई महीना का 20 तारीख को बंगाल पर एक साइक्लोन आया, अम्फान नाम का। तो अम्फान के समय हमारे दो संगठन, श्रमजीवी स्वास्थ्य उद्योग और वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम, हम एफेक्टेड एरियाज में कुल 96 मेडिकल कैंप किए। उन 96 मेडिकल कैंप में हमारा जो तजुर्बा रहा, वो दूसरे बार के जो नेचुरल कैलामिटीज के कैंप, उससे कुछ अलग था। इससे पहले हम 99 का उड़ीसा का सुपर साइक्लोन, 2000 और 2001 का बंगाल में फ्लड्स, 2009 का आयला, सारे नेचुरल कैलामिटीज में हम काम किए। इस समय हम जब कैंप किए, कैंप में हमारा हम देखे कि लोग डायरिया लेके या रेस्पिरेटरी इलनेस लेके नहीं आ रहा है, उन्होंने आ रहा है क्रॉनिक इलनेसेस को लेके, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इश्केमिक हार्ट डिजीज, जिसका इलाज लॉन्ग स्टैंडिंग इलाज की जरूरत है, जो इलाज पहले कोई शासकीय अस्पताल में या कोई प्राइवेट डॉक्टर के पास होता रहा, लेकिन कोरोना के कारण सरकारी हस्पताल कोरोना हस्पताल होने के कारण जो ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। तो हम जब सरकार से मिले 17 जून को तो सरकार के पास हमारे रहा कि आप कोरोना का इलाज कीजिए, लेकिन कोरोना के इलाज के पास इलाज के साथ साथ नॉन कोविड इलनेसेस इलाज भी बड़ा शुरू होना चाहिए। वेस्ट बंगाल में जो हुआ था, वेस्ट बंगाल में 3 बड़ा हॉस्पिटल जिसमें मेडिकल कॉलेज है, सागर दत्त मेडिकल कॉलेज है और एमआर बांगुर नाम का साउथ 24 परगनास का एक बड़ा अस्पताल है। ये 3 अस्पताल को सरकार ने कोविड अस्पताल का दर्जा दिए और कई छोटे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल को एक्वायर किए कोविड हॉस्पिटल के रूप में। तो ये जो बड़ा जो स्टेट हॉस्पिटल, वो स्टेट हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल कर देने के कारण इनमें जो नॉन कोविड बीमारियों का जो इलाज होता रहा वो प्रभावित हुए। तो और मेडिकल एजुकेशन भी अफेक्टेड हुए। तो सरकार के पास हमारा मांग रहा कि आप हर जगह हर अस्पताल में आप कुछ वार्ड कोविड के लिए गैरमार्क कीजिए, लेकिन कोविड के पास कोविड के साथ साथ नॉन कोविड बीमारियों का इलाज भी शुरू कीजिए। तो वो थोड़ा बहुत हुआ भी था और हम सरकार के आह्वान पर हमारे वॉलंटियर्स कोविड हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल सरकार का जो प्रोटोकॉल है कोरोना मैनेजमेंट का, वो प्रोटोकॉल के मुताबिक हॉस्पिटल काम कर रहा है या नहीं, इसमें भी हम प्रोटोकॉल मॉनिटरिंग टीम में भी हम भाग लिए। फर्स्ट वेव जब ठीक होता रहा, इन्फेक्शन का रेट जब कम होते रहा, उस समय पूजा आया। बंगाल में आप जानते हो दुर्गा पूजा एक बड़ा फेस्टिवल है जिसमें बहुत लोगों की एक साथ मिलना ये होता है। तो सरकार को हम सचेत करते रहे कि पूजा के समय अगर बहुत सारे लोग अगर इकट्ठा हो, उनमें अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हो, उनमें अगर मास्क का यूज प्रॉपरली ना हो, तो इससे बीमारी फैल सकता है। लेकिन सरकार हमारा हमारे सुझाव में बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिए। अल्टीमेटली हाई कोर्ट में हमारे कुछ दोस्त एक PAEL किए, तो हाई कोर्ट का इंटरवेंशन की जरूरत हुआ, तब जाके सरकार कुछ पॉजिटिव कदम उठाया। सिमिलर चीज हुआ काली पूजा, दीपावली और छठ पूजा के समय। आप जानते इस समय फायर क्रैकर्स फट जाता है। तो हाँ, हमारा कहना था कि कोविड मुख्य रूप से फेफड़ा का बीमारी है, तो बाजी फटाने के कारण अगर एयर पोल्यूशन होता है तो इससे कोविड के मरीज और प्रभावित होंगे। तो सरकार कदम उठाए और फायर क्रैकर्स फटाना बंद करने के लिए कोशिश करे, लेकिन इस बार भी हाई कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा, तब जाके काम हुआ। फिर इस साल की शुरुआत में बंगाल में कम रहा इन्फेक्शन का रेट। कुछ दिन तो ऐसा गया जिस दिन एक भी लोगों की मौत नहीं हुई, और सरकार भी कॉम्प्लेसेंट रहा। लेकिन हम डॉक्टरों के जो संगठन है, हम बार बार सरकार को बोलते रहा, इलेक्शन कमीशन को बोलते रहा। बंगाल में मार्च के शुरू से लेकर अप्रैल का शुरू तक जो चुनाव हुआ करीब 1 महीना, तो वही चुनाव के कैंपेनिंग में, मास मीटिंग में जो लोग इकट्ठा हो रहे, उससे बीमारी और फैल सकता है। तो ये दूसरा तरीका से हो, कैंपेन दूसरा तरीका से हो, लेकिन सरकार या इलेक्शन कमीशन हमारे सुझाव पर ध्यान नहीं दिया। और तो फिर सेकंड वेव आया। सेकंड वेव बंगाल के लिए बहुत ही खराब रहा। बहुत लोग पिछले बार जैसा, पिछले परिवार में अगर एक एक व्यक्ति अफेक्टेड है, उनको आइसोलेट करके बाकी लोग, परिवार के बाकी लोग पहुंच रहा था, लेकिन इस बार परिवार के हर लोग एक साथ अफेक्टेड हुए। टेस्ट कम कम होता रहा, जितना मात्रा में टेस्ट होनी चाहिए और टेस्ट कम हुआ। लोगों का जब ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल करता रहा, पिछले साल सरकार के जो हेल्पलाइन में फोन करने से 4-5 घंटा में एक बेड का बात हो जाता था, इस बार 24 घंटा, 48 घंटा, यहाँ तक कि 72 घंटा लग गया एक बेड के बंदोबस्त करने के लिए। कई लोग घर में कई लोगों की देहांत हुई। तो इस बार हम बंगाल के सरकार का जो रोल रहा वो पॉजिटिव नहीं था। पिछले बार जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर या हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी जिस तरीके से प्रोएक्टिव रहे, इस बार ऐसा नहीं हुआ और लोगों की मौत हुई। तो हम बंगाल के जो जन संगठन है, जन संगठन के लोग कुछ कुछ कदम उठाया। हम मास्क यूज के लिए, यूनिवर्सल यूज ऑफ मास्क कैंपेन, एक कैंपेन को करता रहा। हम इम्यूनाइजेशन का मांग उठाया। हमारा मांग था यूनिवर्सल फ्री एडल्ट वैक्सीनेशन, जो अभी तक नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, बहुत बाकी है अभी भी। हमारी मांग था कि हर अस्पताल में सब डिविजनल हॉस्पिटल या उसके ऊपर लेवल का हर अस्पताल में वार्ड होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ। तो ऐसा एक स्थिति है, ऐसा एक स्थिति है। और थर्ड वेव अगर अक्टूबर में आएगा तो वो हो सकता है वो हमारे राज्यों में खतरनाक होगा। लेकिन इस बार हम सिविल सोसाइटी के लोग सेकंड वेव से ज्यादा प्रिपेयर प्रिपेयर रहेंगे, इसका कोशिश जारी है। अलग अलग डॉक्टरों का संगठन, साइंस ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने लोगों में कैंपेन कर रहा है, अवेयरनेस की बात फैल रहा है, वैक्सीनेशन की मांग को उठा रहा है। हो सकता है कि थर्ड वेव को हम बेहतर तरीका से मुकाबला कर सकें।
जी नहीं तो इसमें आपके अनुभव में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अभी तक इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे देखें तो अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्राइवेट डॉक्टर्स खासकर यूज करते रहे हैं, और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट और ICMR की तरफ से भी जो प्रोटोकॉल्स पहले रेकमेंड हुए थे उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन इस तरह के दवाई थे, और एंटीबायोटिक्स का बहुत इस्तेमाल हुआ है चारों तरफ। तो आप लोगों ने उसको कैसे टैकल किया, ये कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए?
बंगाल का प्रोटोकॉल भी सेंट्रल के जो प्रोटोकॉल या ICMR का जो प्रोटोकॉल उसका जैसा इरेशनल रहा। तो हमारा संगठन वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम, हमारे करीब 150 मेंबर एक टेलीमेडिसिन के सर्विस हम चलाए करीब 2.5 महीने से। तो जब हमारा टेलीमेडिसिन का सर्विस जब शुरू हुआ तो लोगों के मतलब हम आपस में बात किए कि क्या हम क्या करना चाहिए। एक कोविड मरीज जो होम आइसोलेशन में है, क्या हम उसको डॉक्सीसाइक्लिन खिलाएंगे, क्या हम उनको आइवरमेक्टिन देंगे, क्या हम उनको विटामिन बी सी और डी खिलाएंगे। तो इसको लेके डॉक्टरों के बीच कुछ डिस्कशन हुए और आखिरी में करीब 294 डॉक्टर, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और फार्माकोलॉजिस्ट, इन्फेक्शस डिजीज स्पेशलिस्ट, इन लोगों से हम बातचीत किए और हमें हमारा प्रोटोकॉल हम तैयार किए। तो हमारा जो प्रोटोकॉल हम तैयार किए थे उसमें होम आइसोलेशन में सिर्फ पैरासिटामोल इस्तेमाल की बात रहा, और अस्पताल में इलाज के समय ऑक्सीजन, इंटरवेनस स्टेरॉइड और सबक्यूटेनस एंटीकोएगुलेंट की बात रही। तो हमारे प्रोटोकॉल हम तैयार करने के कुछ ही दिन बाद ICMR जो प्रोटोकॉल लेके आया वो करीब करीब हमारे हमारे प्रोटोकॉल से मिलता जुलता है। फिर भी प्रोटोकॉल में कुछ ICMR के प्रोटोकॉल में कफ सिरप जैसा कुछ इरेशनल चीजों का उल्लेख है, और बंगाल का प्रोटोकॉल भी ICMR के प्रोटोकॉल निकालने के बाद बंगाल का प्रोटोकॉल भी पहले से कुछ रैशनलाइज हुए। लेकिन हम तो ये नहीं किए, हम शुरू से ही पिछले साल भी हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इस्तेमाल नहीं किए या डॉक्सीसाइक्लिन एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल नहीं किए। हम सिर्फ पैरासिटामोल इस्तेमाल करके हमारा होम आइसोलेशन के मरीजों को संभाल सके।
इस दौर में जैसे आपने जिक्र किया, आप लोगों का जो पॉइंट था कि नॉन कोविड केसेस को निगलेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन निगलेक्ट किस हद तक हुआ, मतलब जो कोविड के पूरे सारे अस्पताल कोविड केयर सेंटर बनने के कारण, या जो दहशत था कोविड को लेके, नॉन कोविड पेशेंट भी जाना नहीं चाहते।
दहशत अभी भी है। अभी भी अगर कोई मरीज को हम बोलते हैं कि आप अस्पताल में जाओ, आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि अवॉइड करने का। उनके मन में शंका है कि अगर हम अस्पताल में जाए तो हमारा कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। पिछले साल बहुत लोग, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है, शायद सरकार के पास भी नहीं है, जितने लोग कोविड से मरे, हो सकता है कि उसके उससे ज्यादा लोग नॉन कोविड इलनेस में मरे, कैंसर के मरीज को कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी नहीं हुआ, हार्ट डिजीज के पेशेंट की जो दवाई की जरूरत है, जो एंजियोप्लास्टी का जरूरत है वो नहीं हुआ, डायबिटीज के मरीज विदाउट मेडिसिन रहे, तो है। लेकिन इसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है कि कितने लोग एक्चुअली अफेक्टेड हुए उनको भी इलाज नहीं होने के कारण, उसका स्टेटस नहीं है।
नहीं, इस दौरान जैसे बहुत सारे, तो बंगाल में कितना हुआ ये नहीं मालूम, लेकिन उत्तर भारत में जैसे दूसरे दवा प्रणालियों का भी काफी इस्तेमाल हुआ है, ये कोरोनिल और आयुर्वेद और होम्योपैथी, इन सब का बंगाल में किस हद तक इस तरह का देखने को मिला?
बंगाल में हम हमारे हमारे जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर तो ये सब इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन दूसरे चीजों का इस्तेमाल किया, जो जैसे रेमडेसिविर, टॉसिलिज़ुमाब, हाँ, जिनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उनके लिए भी इस्तेमाल हुआ। हाँ, लोग रेमडेसिविर खरीदने के लिए जमीन बेचा या मकान बेच दिया, ऐसा तो हुआ।
आपकी नजर में रेमडेसिविर का क्या कोई यूटिलिटी था भी कि नहीं? तो मैं प्योरली
हैं?
मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रेमडेसिविर या टोसिलुजुमाब का कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट था कि नहीं?
बहुत ज्यादा है बोल के तो एविडेंस नहीं बोल रहा है, बहुत ज्यादा एविडेंस है बोल के तो हमारे पास जो एविडेंस तो नहीं है। और अभी जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के जो ग्रुप्स है, उन्होंने तो इसको इस्तेमाल करने के लिए मना ही कर रहा है। WHO भी रेमडेसिविर के बारे में मना ही कर रहा।
जी। तो इस दौरान जो एक चीज नजर आता है कि ये पैंडेमिक में तो खैर जहां तक इन्फेक्शन का सवाल है सभी वल्नरेबल हैं, वो गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन जो देखने को मिल रहा है कि एक जो समाज में जो दूसरी समस्याएं हैं, वर्ग विभाजन हो चाहे जात का मामला हो या महिलाओं के साथ किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन सब का भी इम्पैक्ट पड़ा है कोविड के रेस्पॉन्स में, कि जैसे पैसे को ले। हाँ
आपका आपका ज्यादातर ये ज्यादातर लोग जो प्रभावित हुए वो तो जो समाज के जो गरीब तबके के लोग, वो लोग ज्यादा प्रभावित हुआ, कोरोना से भी हुआ, और कोरोना को रोकने के लिए जो सरकारी प्रयास लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण भी हुआ।
जी
तो हम तो हमारे संगठन, सिर्फ मेरा संगठन नहीं, डॉक्टरों का जो ज्वाइंट प्लेटफॉर्म शुरू से ही लॉकडाउन के जरूरत के बारे में सवाल कर रहे हैं। अभी तो हम एक कुछ दिन पहले हमारे 5 संगठन एक वेबिनार में, वेल अटेंडेड एक वेबिनार में हम सीधा सीधा लॉकडाउन के विरोध किया। हमारा कहना है कि लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमें ज्यादा मात्रा में लोगों को ट्रेस करना है किन का कोविड हो सकता है, जिनको हमारे हमें सस्पेशन हुआ उनको टेस्ट करना है, और जो पॉजिटिव निकलेगा उनको कॉन्टेक्ट करना है।
जी
लेकिन बंगाल में भी लॉकडाउन एक्सटेंड होते जा रहा है। हम सोचे थे कि एक तारीख से खुलेगा खुलेगा ये ट्रेन या ट्रेन बस, लेकिन बस तो लोग शुरू कर रहे हैं, बस में 50% लोग इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन ट्रेन नहीं खोला और ये भी बंद है आपका। मेट्रो रेल भी बंद है
जी। तो ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर पे आप लोग कैंपेन करते रहे हैं पिछले 2-3-4 साल से, तो ऐसे संदर्भ में यूनिवर्सल हेल्थ केयर कैसे बेनिफिट करता, और ये मांग जो है हम इसको कैसे कहेंगे कि आगे ले जा सकते हैं
ना? हम अगर देखे कि इस बार कोरोना का इलाज हुआ, इलाज में पब्लिक सेटअप सरकारी अस्पताल में, कम से कम बंगाल में तो मैं बोलूंगा ही, सरकारी सेटअप में कोरोना का जो इलाज हुआ वो अच्छा रहा। मैं जो 3 इंस्टीट्यूशन का नाम किया जिसको सरकार को कोविड हॉस्पिटल किया था, एमआर बांगूर मेडिकल कॉलेज और सागर दत्त मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा आईटी हॉस्पिटल भी, यहाँ पर कोरोना का जो इलाज हुआ वो प्राइवेट हॉस्पिटल के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के बराबर का है। बहुत लोगों का जान बचाया इस सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स, और इसके साथ साथ हमको जो देखने को मिला कि प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ मुनाफा का पीछे भाग रहा है, और हमें तो लग रहा है हमारी जो मांग यूनिवर्सल हेल्थ केयर की जो मांग उस पर भी लोगों का समझ में आ रहा है कि अगर यूनिवर्सल हेल्थ केयर होता तब हमारे स्थिति इतना खराब नहीं होगा।
तो ये लॉन्ग कोविड का फिनोमेना जो है, जो कोविड से एक तरह से रिकवर कर गए हैं, डिस्चार्ज हो गए, उनके डिस्चार्ज होने के बाद भी काफी लोगों को कई तरह के तकलीफें हैं, उनको एड्रेस करने के लिए कुछ पहल कोई कर रहा है क्या, ये करना चाहिए? जैसे फटीग है, ब्रेथलेसनेस है,
बहुत लोगों का जो हो रहा है फैटिग हो रहा है और रेस्पिरेटरी डिजीज हो रहा है। यूजुअल एक्सर्शन में सीढ़ी से ऊपर उठने से या थोड़ा दूर चलने से लोगों का शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, लेकिन इसका इलाज बहुत ज्यादा कुछ इलाज है या नहीं हमें अभी तक पता नहीं है, और लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं ब्रोंको डायलेटर देके संभालने का, लेकिन इसके बारे में भी ये होना चाहिए और शोध होना चाहिए और एक प्रोटोकॉल तैयार होना चाहिए कि कैसे हम कोविड के कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करें।